एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। ज्ञान गोष्ठी में हम दुनिया भर के अहम विचारों और किताबों पर चर्चा करते हैं।
आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में क्या कहते हैं गोता लगा रहे हैं जो हमें एक पूरे महाद्वीप का एक अनोखा, मजेदार और अक्सर हैरान करने वाला नजरिया देती है।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं बिल ब्राइसन की किताब इन अ सनबर्न्ड कंट्री की।
हाँ। जिसे कुछ देशों में डाउन अंडर नाम से भी जाना जाता है। और ये किताब मतलब आज भी उतनी ही जरूरी है।
क्यों?
क्योंकि ये हमें सिखाती है कि किसी जगह को उसकी बनी बनाई छवि से परे जाकर कैसे देखें। ऑस्ट्रेलिया, हम सोचते हैं कंगारू, सिडनी ओपेरा हाउस, शायद बस यही सब। लेकिन ब्राइसन दिखाते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा जटिल है, खतरनाक है और साथ ही मतलब आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक भी है।
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का सफरनामा नहीं है, ये तो एक तरह से दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की दावत है।
सही कहा।
ये पूछती है हम अक्सर उन जगहों को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं जो हमारी नजरों से जरा दूर है। तो चलिए ब्राइसन के साथ ऑस्ट्रेलिया की इस अनोखी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले ये बिल ब्राइसन हैं कौन, इनकी शख्सियत भी आप देखें तो इनकी किताबों जितनी ही दिलचस्प है।
अच्छा।
हाँ, वो मूल रूप से तो अमेरिकी हैं लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में बिताया है, तो उनके पास एक तरह की दोहरी नजर है।
मतलब दोनों संस्कृतियों को अंदर और बाहर से देखते हैं।
बिल्कुल, वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को समझते हैं और शायद यही चीज उनकी लिखाई को खास बनाती है।
हाँ, उनका अंदाज बहुत अलग है। वो यात्रा साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों पर लिखते हैं।
हाँ।
पर उसमें गहरी जानकारी तो होती है मगर साथ में गजब का हास्य भी होता है।
हाँ, और खुद का मजाक उड़ाने की क्षमता और एक आम इंसान की तरह हैरान होने का भाव भी। वो कोई अकादमिक विशेषज्ञ बनकर नहीं लिखते।
सही बात है। मैंने उनकी दूसरी किताबें भी देखी हैं, जैसे नोट्स फ्रॉम अ स्मॉल आइलैंड या अ वॉक इन द वुड्स।
हाँ, उनमें भी यही अंदाज दिखता है, एक बाहरी व्यक्ति की पैनी नजर जो उन चीजों पर भी गौर करती है जिन्हें वहां रहने वाले शायद भूल चुके होते हैं। वो सवाल पूछते हैं, कभी कभी गलतियां भी करते हैं और पाठक को अपने साथ सीखने की प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह के लिए मुझे लगता है ये नजरिया एकदम सटीक बैठता है। वो पहले से बनी बनाए धारणाओं के साथ नहीं जाते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक खुली जिज्ञासा के साथ जाते हैं कि आखिर ये जगह है क्या।
हाँ,
उनकी यही ताजगी भरी नजर हमें ऑस्ट्रेलिया को एक नए ढंग से देखने में मदद करती है।
तो इन अ सनबर्न्ड कंट्री किताब आखिर है किस बारे में? जैसा आपने कहा, ये कोई टूरिस्ट गाइड तो है नहीं?
बिल्कुल नहीं, ये बिल ब्राइसन की ऑस्ट्रेलिया भर में की गई कई यात्राओं का एक संग्रह है। मतलब वो शहरों से लेकर दूर दराज के रेगिस्तानों तक घूमते हैं।
हाँ, और इसका मकसद सिर्फ घूमना नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया को समझना है। ब्राइसन इस बात से हैरान है कि दुनिया इस विशाल, विकसित और अनोखे देश के बारे में इतना कम क्यों जानती है।
सही,
वो कंगारू, कुआला और क्या कहते हैं मेल गिब्सन की छवियों से आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलिया की असलियत दिखाना चाहते हैं।
बिल्कुल, किताब का केंद्रीय विचार या कहें कि जो मुख्य पहेली है वो ऑस्ट्रेलिया के विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमती है।
विरोधाभास? कैसा विरोधाभास?
देखिए, एक तरफ तो ये महाद्वीप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों, मकड़ियों, जेलीफिश और मगरमच्छों का घर है।
बाप रे।
हाँ, यहाँ का मौसम जानलेवा हो सकता है, जमीन का बड़ा हिस्सा एकदम सूखा और वीरान है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोग, ब्राइसन उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा मिलनसार, खुशमिजाज, मददगार और शांत लोगों में से पाते हैं।
अच्छा, ये तो बड़ा अजीब है।
है ना, यहाँ के शहर बेहद सुरक्षित और व्यवस्थित हैं। तो सवाल ये उठता है, इतने खतरनाक माहौल ने इतने निश्चिंत लोग कैसे पैदा किए? ये कैसे मुमकिन है?
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
ब्राइसन इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। वो भूगोल, इतिहास, जीव जंतुओं, लोगों और संस्कृति सबको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि ये विरोधाभास ही शायद ऑस्ट्रेलिया का असली चरित्र है।
चलिए अब जरा ब्राइसन की यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। उनकी शुरुआत होती है इंडियन पैसिफिक ट्रेन से।
हाँ, जो सिडनी से पर्थ तक जाती है, मतलब पूरा महाद्वीप पार करती है।
सोचिए, और यही उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया की विशालता और वो खालीपन का जबरदस्त एहसास होता है। मीलों तक कुछ नहीं सिवाय सपाट जमीन के।
वो नल्लरबोर प्लेन का जिक्र करते हैं, एक ऐसा मैदान जहाँ पेड़ ही नहीं है और जो ब्रिटेन से भी बड़ा है।
क्या बात कर रहे हैं, ब्रिटेन से भी बड़ा?
हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है ना?
बिल्कुल।
और यहीं से उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक पहलू से भी होता है। वो किताबों में पढ़ते हैं ये कैसे यहाँ दुनिया की सबसे जहरीली चीजें हैं, मकड़ियाँ, सांप, ऑक्टोपस, जेलीफिश।
उफ।
वो डर और मजे के एक अजीब से मिश्रण के साथ इन सब के बारे में बताते हैं। फिर वो पर्थ पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि ये शहर दुनिया के बाकी हिस्सों से कितना कटा हुआ है, एकदम अलग थलग।
इसके बाद वो पूर्वी तट पर लौटते हैं और सिडनी पहुंचते हैं। शहर की खूबसूरती और वो वाइब्रेंसी उन्हें पसंद आती है।
हाँ, लेकिन वो इसका इतिहास भी नहीं भूलते। वो याद दिलाते हैं कि इसकी शुरुआत एक पैनल कॉलोनी के तौर पर हुई थी,
यानी दंड कॉलोनी,
जहां अपराधियों को भेजा जाता था।
बिल्कुल, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे सजा के तौर पर अपराधियों को भेजने के लिए बसाया था।
सोचिए, ये इस आधुनिक चमकते शहर की नींव है। ये अपने आप में गजब का विरोधाभास है।
हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के यूरोपीय इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी।
सही कहा। फिर ब्राइसन कैनबरा जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है।
हाँ, जिसे योजना बनाकर बसाया गया था।
हाँ, पर उन्हें ये शहर है थोड़ा, क्या कहते हैं, अजीब, खाली खाली और थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगता है। यहीं वो एक मजेदार और रहस्यमयी किस्सा सुनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट का। वो 1967 में समुद्र में तैरते हुए गायब हो गए।
गायब हो गए मतलब
गायब हो गए, आज तक पता नहीं चला। ब्राइसन के लिए किस्सा ऑस्ट्रेलियाई जीवन की अप्रत्याशित और थोड़ी विचित्र प्रकृति का प्रतीक बन जाता है।
वाह, ये तो सच में अजीब है। फिर दक्षिण की तरफ मेलबर्न।
हाँ, मेलबर्न, जिसे वो सिडनी से ज्यादा यूरोपियन और शायद थोड़ा ज्यादा गंभीर पाते हैं। यहाँ उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खेल प्रेम, खासकर क्रिकेट के प्रति जुनून का पता चलता है।
क्रिकेट तो वहाँ बहुत लोकप्रिय है,
बहुत ज्यादा। फिर वो मशहूर ग्रेट ओशन रोड पर गाड़ी चलाते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। एडिलेड पहुंचकर वो जानते हैं कि इसे अपराधियों ने नहीं बल्कि स्वतंत्र प्रवासियों ने बसाया था।
अच्छा, तो वहाँ का इतिहास अलग है।
हाँ, और इसी दक्षिणी हिस्से में वो ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती यूरोपीय खोजकर्ताओं की दुखद कहानियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे बर्क और विल्स।
ओ हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में।
इन लोगों ने महाद्वीप को पार करने की कोशिश की, लेकिन भयंकर परिस्थितियों, भूख और शायद अपनी ही गलतियों की वजह से मारे गए। ये कहानियां आउटबैक की कठोरता को दिखाती हैं।
आउटबैक मतलब वो अंदरूनी रेगिस्तानी इलाका।
हाँ, वही विशाल रेगिस्तानी इलाका। ये दिखाता है कि यूरोपीय तरीके वहाँ हमेशा काम नहीं करते थे।
फिर तस्मानिया का भी जिक्र है, वो जो द्वीप है नीचे।
हाँ, एक छोटा सा दौरा। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग, ज्यादा गंभीर सा लगता है। ब्राइसन पोर्ट आर्थर जैसी पुरानी जेलों के भयानक इतिहास की बात करते हैं। और तस्मानिया टाइगर जानी थाइलासीन के विलुप्त होने की दुखद कहानी बताते हैं। एक अनोखा जानवर था जिसे इंसानों ने शिकार करके खत्म कर दिया।
ओहो, ये तो दुख की बात है।
हाँ, यहाँ नुकसान और विस्मृति का भाव थोड़ा गहरा हो जाता है।
फिर वो मुख्य भूमि पर वापस आते हैं।
हाँ, और कूबरपीडी जैसे अजीबोगरीब खनन शहर जाते हैं। पता है वहाँ क्या खास है?
क्या?
लोग जमीन के नीचे घरों में रहते हैं।
जमीन के नीचे? क्यों?
ताकि भयंकर गर्मी से बच सकें। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कैसे अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाला है।
गजब है।
वो ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय बाड़ों का भी जिक्र करते हैं, डिंगो फेंस, रैबिट प्रूफ फेंस, हजारों किलोमीटर लंबे,
जानवरों को रोकने के लिए।
हाँ, ये प्रकृति को कंट्रोल करने की इंसानी कोशिशों के विशाल लेकिन अक्सर असफल उदाहरण है। किताब का आखिरी हिस्सा उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दिल यानी रेड सेंटर में ले जाता है, एलिस स्प्रिंग्स शहर, और फिर उलुरु या आयर्स रॉक और काटाजूटा की वो विशाल लाल चट्टाने। ब्राइसन इन मोनोलिथ की भव्यता, उनके आध्यात्मिक और भूवैज्ञानिक महत्व से बहुत प्रभावित होते हैं।
हाँ, वो तस्वीरें तो बहुत मशहूर है।
बिल्कुल, और यहीं पर वो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों यानी आदिवासी लोगों के इतिहास और संस्कृति पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
ये जरूरी भी है।
हाँ, और ये किताब का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। ब्राइसन यूरोपीय उपनिवेशीकरण के दौरान आदिवासी लोगों के साथ हुए भयंकर अन्याय, जमीन छीनना, नरसंहार, संस्कृति का विनाश, इन सब पर खुलकर दुख और शर्म व्यक्त करते हैं। वो मानते हैं कि एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर वो उनके दर्द और जमीन से उनके गहरे रिश्ते को पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन वो उस इतिहास को स्वीकार करने और सम्मान देने की जरूरत पर जोर देते हैं।
ये बहुत अहम बात है। फिर यात्रा का अंत कहाँ होता है?
सुदूर उत्तर में, डार्विन और उसके आसपास के उष्णकटिबंधीय इलाकों में। यहाँ रेगिस्तान की सूखी गर्मी नहीं बल्कि अलग तरह के खतरे हैं।
जैसे?
भयंकर मानसून, चक्रवात। एक चक्रवात ने 1974 में डार्विन शहर को लगभग तबाह कर दिया था।
और हाँ, खारे पानी के विशाल मगरमच्छ।
बाप रे, मतलब खतरे हर जगह हैं।
हाँ।
ब्राइसन इनके बारे में भी अपने जाने पहचाने डर और रोमांच मिले अंदाज में लिखते हैं। वो काकाडू नेशनल पार्क की अविश्वसनीय जैव विविधता और हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट को देखकर भी चकित रह जाते हैं। ये अंतिम यात्राएं किताब के मूल विचार को और पुख्ता करती हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रकृति की एक अथक, शक्तिशाली और अदम्य शक्ति का घर है।
ब्राइसन ऑस्ट्रेलिया छोड़ते हैं, लेकिन उनके मन में इस जगह के लिए गहरा सम्मान, स्नेह और आश्चर्य का भाव होता है।
वो मानते हैं कि ये जगह दुनिया की नजरों में जितनी है उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी लंबी और दिलचस्प यात्रा से कुछ खास बातें, कुछ मुख्य संदेश क्या उभर कर आते हैं?
सबसे पहला और सबसे अनोखा संदेश तो वही है, खतरे और आराम का विरोधाभास।
हाँ, ये बात बार बार आती है। ये कैसे हो सकता है कि जहाँ धरती पर सबसे जहरीले जीव हों, वहीं इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा निश्चिंत और दोस्ताना हो? ब्राइसन के लिए यही ऑस्ट्रेलिया का सार है।
शायद ये हमें भी सिखाता है कि जीवन में मुश्किलें और आराम साथ साथ चल सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ भारत में भी कितनी ही रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच लोग जिंदा दिली से जीते हैं, है ना?
हाँ, ये बात तो है। दूसरा अहम विषय क्या है?
दूरी और पैमाने का अत्याचार। मतलब ऑस्ट्रेलिया इतना विशाल है और दुनिया के बाकी हिस्सों से इतना दूर कि इस दूरी ने ही वहाँ के जीवन, प्रकृति और लोगों की सोच को गढ़ा है।
इसने चीजों को मुश्किल बनाया, लेकिन शायद लोगों में आत्मनिर्भरता और एक खास किस्म की आजादी की भावना भी भरी।
सही कहा। भारत की विशालता और विविधता भी तो हमारे सोचने के ढंग पर असर डालती है ना? दूरी मायने रखती है।
बिल्कुल। तीसरा थीम?
तीसरा है जीवित बचे लोगों का राष्ट्र। ब्राइसन दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ, पौधे, जानवर, इंसान, कठोर परिस्थितियों में टिके रहने वाले हैं। चाहे वो शुरुआती कैदी हो जिन्होंने भयानक मुश्किलों का सामना किया, या आज के ऑस्ट्रेलियाई जो हर हाल में मस्त रहते हैं, और उसमें आदिवासी लोग भी शामिल हैं जिनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति इतने विनाश के बाद भी जिंदा है।
ये जुझारूपन का एक सबक है।
हाँ, और चौथा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है अनदेखा और भूला हुआ इतिहास।
हाँ, ये आपने पहले भी जिक्र किया था।
ब्राइसन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास सिर्फ कंगारुओं और क्रिकेट का नहीं है, ये अजीबोगरीब घटनाओं, असफल मिशनों और सबसे बढ़कर आदिवासी लोगों के साथ हुए अन्याय की कहानियों से भरा है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है।
वो कहते हैं कि इस अनदेखे इतिहास को समझे बिना आप आज के ऑस्ट्रेलिया को नहीं समझ सकते।
बिल्कुल, और ये हर देश, हर समाज पर लागू होता है। हमें अपने इतिहास की परतों को खोलना ही पड़ता है।
और इन सब के साथ ऑस्ट्रेलियाई लोगों का वो अनौपचारिक, मजाकिया, सीधा और मददगार स्वभाव भी एक अहम संदेश है।
हाँ, वो उस खतरनाक माहौल के बिल्कुल विपरीत खड़ा है।
ब्राइसन के लिखने का अंदाज इतना जबरदस्त है कि कई बातें सीधे दिल में उतर जाती हैं।
बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया के उस विरोधाभास पर उनकी ये टिप्पणी, मुझे याद है, ये दुनिया की चेतना में कोई स्थान नहीं रखता, ये सबसे खाली, सबसे सपाट, सबसे गर्म, सबसे सूखा महाद्वीप है, और फिर भी ये जीवन से भरपूर है, सबसे कठोर, विपरीत और भयंकर दृढ़ चरित्र वाला जीवन।
वाह, ये पंक्ति एक साथ कितनी बातें कह जाती है, दुनिया की नजरअंदाजी, जमीन की कठोरता और फिर भी जीवन का अद्भुत लचीलापन,
है ना? और जब वो आउटबैक के अकेलेपन के बारे में लिखते हैं, आप एक शांत, खाली, झिलमिलाती, गर्म और बिल्कुल अजीब परिदृश्य में पूरी तरह से अकेले हैं। एकमात्र आवाज आपके कानों में एक धीमी, लगातार भिनभिनाहट है। ये आपके मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण की आवाज है।
पढ़ते हुए ही वो सन्नाटा और वो विशालता महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद वहां पहुंच गए हो।
समृद्ध, सुव्यवस्थित और सहज रूप से समतावादी है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो पसंद आए।
ये उस खतरनाक प्रकृति के सामने इंसानी गर्मजोशी का खूबसूरत चित्रण है। ये दिखाता है कि माहौल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसानियत पनप सकती है।
बिल्कुल।
तो ये तो हुई किताब की बातें, लेकिन इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? कुछ व्यवहारिक सबक?
मुझे लगता है सबसे पहली सीख है गहरी जिज्ञासा बनाए रखना। ब्राइसन दिखाते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह, चाहे वो हमारा अपना शहर हो या कोई दूर देश, कहानियों और अचरजों से भरी है। हम भी अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा गौर से, ज्यादा उत्सुकता से देख सकते हैं।
हाँ, शायद पड़ोस की गली में भी कोई अनूठी कहानी छिपी हो,
क्या पता। दूसरी बात, बाहरी व्यक्ति का नजरिया अपनाने की कोशिश करना,
मतलब विशेषज्ञ न होने का फायदा उठाना।
हाँ, एक तरह से विशेषज्ञ न होने के कारण ब्राइसन छोटी छोटी चीजों पर हैरान होते हैं, सवाल पूछते हैं। हम भी कभी कभी बिगनर्स माइंड, यानी एक नौसिखिए की तरह चीजों को देख सकते हैं।
इससे रोजमर्रा की चीजें भी नई और दिलचस्प लगने लगेंगी।
बिल्कुल, अपनी धारणाओं को चुनौती देना जरूरी है, और हाँ, मुश्किलों में हास्य ढूंढना,
ये तो ब्राइसन की खासियत है।
हाँ, उनकी यात्रा में कई गड़बड़ियां होती हैं, कई बार वो डरते भी हैं, लेकिन वो हमेशा मजाक का पहलू ढूंढ लेते हैं, खासकर खुद पर हंसने का।
ये बड़ी सीख है। हंसी हमें तनाव और मुश्किलों से निपटने में मदद करती है। थोड़ी सी हंसी मुश्किलों का बोझ हल्का कर सकती है।
सही का, और साथ ही पूर्वाग्रहों से बचना।
ये भी अहम है।
ये किताब दिखाती है कि किसी जगह या लोगों के बारे में हमारी बनी बनाई राय कितनी अधूरी या गलत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की जो छवि हमारे मन में थी, ब्राइसन उसे तोड़कर कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय तस्वीर पेश करते हैं।
यह हमें सिखाता है कि नई चीजों और लोगों को खुले दिमाग से अपनाना चाहिए, और हाँ, प्रकृति का सम्मान करना।
हाँ, इस सब रचना के हम उसके मालिक नहीं, सिर्फ एक हिस्सा हैं, ये भी एक जरूरी सीख है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि दुनिया वाकई हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा मजेदार और ज्यादा अद्भुत है। ब्राइसन हमें उन कोनों पर ध्यान देने के लिए उकसाते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये एक तरह से दुनिया को फिर से आश्चर्य की नजरों से देखने का न्योता है।
हाँ, और एक आखिरी विचार जो शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है।
क्या?
ब्राइसन ऑस्ट्रेलिया के विरोधाभासों, खतरा और आराम, विशालता और अपनापन को गले लगाते हैं। क्या इन विरोधाभासों को स्वीकार करने से हमें किसी जगह, समाज या शायद खुद को भी बेहतर समझने में मदद मिल सकती है?
अच्छा सवाल है।
क्या हमारे अपने जीवन, हमारे अपने समाज में भी ऐसे विरोधाभास हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं? शायद उन पर गौर करने से हमें कोई नई दृष्टि मिले। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत था।